तत्व जिज्ञासु सज्जनों, हम लोग श्रीमद् भगवद् गीता के आत्मसंयम योगः नामक छठे अध्याय के 37 से 45 श्लोक पर्यंत योग भ्रष्ट की गति के विषय में जो अर्जुन का प्रश्न और भगवान का उत्तर है उसका विचार कर रहे हैं। प्रथम 3 श्लोक में अर्जुन ने जो प्रश्न किया है उसका विचार हम लोग कर चुके। अर्जुन ने कहा कि भगवान, जो अयति है, श्रद्धा से उपेत है, योग से जिसका मन चलित हो गया है, तो वो बीच में ही अल्पायु के कारण जिसका शरीर छूट गया है, उसको ज्ञान का फल मोक्ष नहीं मिलेगा। कर्म तो उन्होंने सकाम भाव से किए ही नहीं है, इसलिए कर्म का फल स्वर्ग भी नहीं मिलेगा। उपासना सहित कर्म का फल ब्रह्मलोक है, वो भी उन्होंने लोक की प्राप्ति की इच्छा से किया ही नहीं है, इसलिए उपासना सहित कर्म का फल ब्रह्मलोक भी उनको प्राप्त नहीं होगा। और शास्त्र गर्हित कर्म से रहित होने से कीटादि भाव भी उसको प्राप्त नहीं होगा। ज्ञान अहम ब्रह्मास्मि हुआ नहीं है, इसलिए निर्विशेष मोक्ष भी उसका संभव नहीं है। तो भगवान, उसका मृत्यु के अनंतर उसकी योग की संसिद्धि को तो प्राप्त नहीं कर पाएगा, तो उसकी कौन सी गति होगी? ये टोटल प्रश्न का सार है। और अपने प्रश्न को स्पष्ट करने के लिए उन्हें दृष्टांत भी बताया, छिन्ना भ्रमीव, जैसे छिन्न अभ्रम है, एक मेघ से अलग हुआ जो अभ्रम है और दूसरे बड़े मेघ को प्राप्त हुए बिना ही बीच में ही वायु के थपेड़े से बिना वृष्टि किए हुए ही जैसे वो समाप्त हो जाता है, क्या इसी प्रकार ज्ञान मार्ग से च्युत और कर्म मार्ग से रहित ये जो योग भ्रष्ट है वो भी छिन्न अभ्रम की भांति नष्ट हो जाएगी? भगवान, ये मेरे मन में संशय हो रहा है कृष्ण, और आपसे अन्य इसका कोई छेदता छेदन करने वाला हो नहीं सकता, आप सर्वज्ञ है। इसलिए मृत्यु के पश्चात की अवस्था को भी आप जानने वाले हैं, इसलिए आप बताइए, आपसे अतिरिक्त कोई इस प्रश्न का छेदन करने वाला मेरे को तो नहीं दिखता है। भगवान श्री कृष्ण ने कृपा करके अर्जुन के प्रश्न का उत्तर 40वें श्लोक से देना शुरू किया, जो 45वें श्लोक पर्यंत चलेगा। तो हम लोग 40वें श्लोक का उच्चारण करते हैं। अर्जुन के जो योगी के प्रति जो नाश की आशंका रूप जो प्रश्न है उसका परिहार भगवान करते हुए कहते हैं, श्री भगवान उवाच पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते न हि कल्याणकृत् कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा कि पार्थ, ये अर्जुन के लिए संबोधन, कहा कि हे पार्थ, नैव इह न अमुत्रह तस्य विनाश विद्यते। कहा कि भाई अर्जुन, इस योग भ्रष्ट का नैव इह, इह यानी इह लोक में भी विनाश नहीं होगा और न अमुत्र परलोक में भी उसका विनाश नहीं होगा। नैव इह। अब देखो, अर्जुन ने तो मृत्यु के पश्चात उसके क्या गति होनी है वो पूछा था, कि वो छिन्न अभ्रम की भांति वो नष्ट हो जाता है या कोई उनकी गति होती है। तो भगवान ने और बढ़ा करके कहा कि अर्जुन, परलोक की क्या केवल कहे, इहलोक में भी उसका विनाश नहीं होता। इहलोक में भी विनाश नहीं होता है और परलोक में भी उसका विनाश नहीं होता है। अच्छा, इहलोक में क्या विनाश होना था? इहलोक में विनाश तो बस शरीर छूट जाना, यही, किंतु इतना ही नहीं। इहलोक में भी जो विनाश ये है कि शिष्ट पुरुष के द्वारा गर्हत्वम, शिष्ट पुरुषों के निंदा के भागी बनना जो है, इहलोक में नाश है। नाश का मतलब ये नहीं कि मृत्यु ही नाश है, व्यक्ति जीता रहे किंतु यदि वो जो है शास्त्र विहित न करके शास्त्र गर्हित कर्म करे, महापुरुषों के कथनानुसार जो जीवन न जिए, तो वो विनष्ट ही है। मानो इहलोक में चाहे वो खाता पीता रहे किंतु वो विनष्ट ही है, समझ लो। जैसे लोक में नहीं कहते, कोई व्यक्ति धन से जब हीन हो जाता है, धंधा छूट जाता है या कोई आपत्ति आ जाती है तो क्या कहते हैं, मैं विनष्ट हो गया, ऐसा बोलते लोक में। हाय हाय, मैं विनष्ट हो गया, अब क्या करूंगा, मैं तो समाप्त हो गया। तो समाप्त हो गया, विनष्ट हो गया, इसका मतलब वो मर नहीं गया किंतु संपत्ति से हीन हो गया। अपार संपत्ति का मालिक था, एक ही रात में सब समाप्त हो गया। कुदरती आपत्ति से भी जब व्यक्ति का सब समाप्त हो जाता है तब भी वो व्यक्ति बोलता है कि मेरा सब लूट गया, अब मैं तो जो है मर ही गया। मानो तो धन से हीन होने को भी मृत्यु को प्राप्त हो गया, ऐसा लोक में कहा जाता है। किंतु महापुरुषों की दृष्टि से कोई व्यक्ति धन से हीन हो जाता है तो वो निंदा के योग्य नहीं होता है। हो जाए धन से हीन, हो जाते हैं, कोई बात नहीं, किंतु महापुरुषों की दृष्टि से जो चरित्र से हीन हो गया ना, वही संसार में निंदा। चरित्र यानी शास्त्र विहित कर्म जो नहीं कर रहा, शास्त्र विरुद्ध कार्य कर रहा, वो जो है शिष्ट के द्वारा गर्ह है। आचार्यों महापुरुषों की दृष्टि से वो व्यक्ति निंद्य है जो देवताओं को भी दुर्लभ इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जो पशुवत कर्म करता है तो वो विनाश ही है। जिन्होंने अपने कर्तव्य का ख्याल नहीं किया, मनमाने ढंग से जो जीता है तो सज्जनों उसको इस लोक में भी नष्ट माना जाता है। महाभारत में एक श्लोक है, वृत्तम यत्नेन संरक्षेत। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्त मायाति याति च। अक्षिण वित्त क्षिण वृत्ततस्तु हतो हतः। देखो कहा कि वृत्तम यानी अपने कर्तव्य का बोध, चरित्र का बोध सदा काल रखे, यत्नपूर्वक उसकी संरक्षा करनी चाहिए, अपने दायित्व का जो है निभाव यत्नपूर्वक करना चाहिए, अपने कर्तव्य का निर्वाह यत्नपूर्वक करना चाहिए, अपने चरित्र की रक्षा यत्नपूर्वक करनी चाहिए मनुष्य को। यदि वृत्त और वित्त दोनों की रक्षा का प्रसंग एक साथ यदि उपस्थित हो जाए, वृत्त यानी कर्तव्य चरित्र और वित्त यानी धन एक साथ में एक काल में यदि दो प्रसंग उपस्थित हो जाए कि वृत्त भी नष्ट हो रहा है वित्त भी नष्ट हो रहा है, तो प्राथमिकता किसको दे? वित्त का रक्षण पहले करे या वृत्त का करे? तो इस श्लोक में कहा कि पहले वृत्त का रक्षण करे, वित्त का नहीं। वृत्तम यत्नेन संरक्षेत, वृत्त की पहले प्रयत्न पूर्वक रक्षा करनी चाहिए। क्यों? वित्त मायाति याति च, धन को पहले नहीं वृत्त को पहली प्राथमिकता, क्योंकि वित्त है धन है वो तो आता जाता रहता है, उसको कोई स्थायी रख नहीं सकता, प्रयत्न करने पर भी नहीं रख सकता, और वृत्त को तो प्रयत्न पूर्वक संरक्षित किया जा सकता है। धन को आप चाहे लाख प्रयत्न करें तो वो आप उसको संरक्षित नहीं कर सकते हैं। आप रात में सो रहे हैं और आपका जनरल मैनेजर फोन करता है रात को 12 बजे के, भाई सब समाप्त हो गया, तो क्या करोगे? आपका बल चलेगा क्या? नहीं। और आदि श्लोक में कहा कि अक्षीण वित्ततः क्षीण, यदि मनुष्य धन से समाप्त हो जाता है तो वो समाप्त नहीं है, अक्षीण है वो, वित्ततः क्षीण। किंतु वृत्ततस्तु, यदि वृत्त से जो क्षीण हो गया तो वो हतो हतः, उसकी इहलोक में भी अपकीर्ति होती है और परलोक में उसकी दुर्गति होती है। धन से क्षीण व्यक्ति की दुर्गति नहीं होती है, इहलोक में भी दुर्गति नहीं होती है। कई एक लोग जो होते हैं जो जिसका धंधा पानी चौपट हो जाता है, उसे चौपट होने में कई एक कारण होते हैं। या धन से हीन हो गया तो इहलोक में वो जो है सुविधा से रहित हो जाएगा, खान पान उसको कम ज्यादा मिलेगा, किंतु उसके कारण परलोक में उसकी दुर्गति हो ऐसा नहीं है। किंतु यदि शास्त्र निषिद्ध कर्म करता है तो उसकी तो इहलोक में भी दुर्गति, यानी महापुरुष के द्वारा वो निंद्य माना जाता है और परलोक में भी उसकी दुर्गति ही होती है। इसलिए इहलोक में महापुरुषों की निंदा का भागी होना भी दुर्गति है। जैसे इहलोक में महापुरुषों के द्वारा निंदा ये क्या है, तो देखिए भर्तृहरि राजा ने कहा, साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पृच्छ विषाणहीन तृणन्न खादन्नपि तद्भागधेयं परमं पशूनां आहार निद्रा भय मेथुनंच सामान्य मेतत् पशुभिर्नराणां धर्मो हि तेषा मधिको विशेष धर्मेण हीना पशुभिः समान। ये निंदा है, ये महापुरुष के द्वारा एक की गई निंदा। यदि इस लोक में मनुष्य साहित्य संगीत कला वगैरह जो गुण है उससे हीन व्यक्ति जो है वो मानो साक्षात पृच्छ विषाणहीन पशु है। पृच्छ यानी पूंछ, विषाण यानी श्रृंग, उन दोनों से रहित वो मानो पशु है। पशु मुख्य पशु शब्द का प्रयोग तो जो पूंछ और श्रृंग से युक्त जो प्राणी है उसके लिए पशु शब्द का प्रयोग होता है, किंतु भर्तृहरि राजा कहते हैं कि जो साहित्य आदि जो सद्गुणों से रहित है तो मानो पृच्छ यानी पूंछ, लांगल, संस्कृत में लांगल कहते हैं, लांगल या पूंछ से और श्रृंग से रहित वो साक्षात पशु है। और आगे क्या कहते हैं, कहते हैं तृणन्न खादन्नपि, ये पशु होते हुए भी इतना अच्छा है कि वो घास नहीं खाता है। पृच्छ और श्रृंग से रहित तो होते हुए भी इतना अच्छा है कि वो घास नहीं खाता है, ये पशुओं का भाग्य है। नहीं तो ये पशु जो घास खाने लग जाएगा तो जो वस्तुसत पशु है उसको घास तक नहीं मिलेगा, ये मनुष्य पशुओं का घास भी छीन लेगा, अभी छीन ही तो रहा। पशु के लिए जो है घूमने की जगह होती है उसको गौचर बोलते हैं, बोलते हैं गौचर वो जगह है जहां पर गाय वगैरह पशु यथेच्छ विचरण कर सकते हैं, जिसको कोई उसका वारण नहीं कर सकता है। उसके लिए यथेच्छ विचरण के लिए हर गांव में जगह निकाली जाती है और वो बड़ी जगह होती है, उस जगह पर केवल पशुओं का ही अधिकार होता है, वो राजपत्रित होता है कि ये पशु के लिए है। पशु जिसमें यथेच्छ विचरण कर सकता है कोई उसको लट्ठी डंडे से भगा नहीं सकता है जिस जगह से, उसको गौचर कहते हैं। गाय यथेच्छ विचरण जहां पर कर सकती है, पशु वगैरह कर सकते हैं, लेकिन आज हालत देखो गोचर को भी जो है मनुष्य ने हड़प लिया है तो गाय का चारा नहीं खा लिया। इसलिए ये निंद्य है। और भी कहा कि आहार निद्रा भय मेथुनंच सामान्य में तत् पशुवीर नारायण, यदि मनुष्य आहार निद्रा भय और मेथुन इस चार कार्य तक ही जिसका जीवन सीमित है उस चार कार्य करते करते ही जो मर जाता है तो वो उनकी दुर्गति निश्चित है। और ये आहार आदि जो चार कार्य ये मनुष्य और पशु में समान है, सामान्यम एतत् सामान्यम, ये समान है। पशु भी आहार निद्रा भय और मैथुन चार कार्य करता ही है, और मनुष्य भी ये आहार आदि चार कार्य तक ही सीमित रहे, उसमें ही संलग्न रहे तो वो पशु है। मनुष्य को यदि अपने को पशु से भिन्न कोटि में रखना है, यदि मनुष्य कह सके कि मैं पशु से उत्कृष्ट हूं, श्रेष्ठ हूं, तो वो एक ही कारण है वो जिससे कि वो अपने को पशु से श्रेष्ठ कह सकता है, वो जो कारण है धर्म। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष। पशु और मनुष्य में यदि कोई फर्क है, डिफरेंट, जिससे कह सके कि ये मनुष्य है और ये पशु है, उसका यदि विभागीकरण किसी लक्षण से करना है तो वो है धर्म। मनुष्य में धर्म अधिक है तो वो जो है अपने को मनुष्य कह सकता है, यदि धर्म से हीन व्यक्ति तो पशु के समान है, क्योंकि पशु के अंदर भी आहार आदि चार कार्य है और मनुष्य भी आहार निद्रा भय और मैथुन तक ही सीमित है, तो उस पशु और मनुष्य में कोई फर्क नहीं है। धर्मो ही तेषाम अधिको विशेष, धर्मेण हीना पशु भी समान, यदि धर्म से हीन है तो वो पशु सदृश है। इसलिए इस लोक में जो धर्मादि सत्कर्मों से हीन है उसकी बड़ी निंदा कही गई है, तो महापुरुषों के द्वारा वो निंद्य है, शास्त्रों के द्वारा वो निंद्य है। तो इस लोक में जो है निंदा के योग्य होना वो विनाश है। अर्जुन ने जिस योग भ्रष्ट के विषय में प्रश्न पूछा तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जिस योग भ्रष्ट के बारे में तुमने जो प्रश्न पूछा है, हे अर्जुन, उसका इहलोक में विनाश संभव नहीं है। नैव इह, इहलोक में भी उसका विनाश संभव नहीं है, यानी कि वो निंदा का भागी नहीं है, गर्हित नहीं है। देखिए, इहलोक में इन्होंने कुछ भी कर्म नहीं किया तो भगवती श्रुति के अनुसार अथ एतयो पथो न कत्रेण चते कीटा पतंगा दंद शुकम, जिसने इहलोक और परलोक दोनों के लिए कोई कार्य नहीं किया है तो वो कीट पतंग और द्वंद वगैरह जो निकृष्ट जो है पतंगादि जो है दंद शुक मच्छर वगैरह कीट वगैरह पतंग वगैरह की योनि को प्राप्त करता है। और मनु ने भी कहा है कि मनुष्य शरीर को धारण करके जो अपने कर्तव्य से हीन है उसके लिए कहा कि वांताश्चुलका मुख प्रेतो विप्रु धर्मात् स्वकाच्युतः, मनुस्मृति में कहा। इसलिए जो मनुष्य इहलोक में भी शास्त्र भेद कर्म नहीं करता है तो उसका विनाश सुना गया। इसी प्रकार से भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, इस योग भ्रष्ट का विनाश इहलोक में भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने यथा शास्त्र जैसे शास्त्र में कहा गया है वैसे ही उन्होंने संन्यास किया है, यथा शास्त्रम कृत संन्यास है। और सर्वतः विरक्त है, विरक्त होने पर ही उन्होंने संन्यास ग्रहण किया था। संन्यास ग्रहण के अनंतर वो वेदांत का श्रवण कर रहा था, निधिध्यासन तक पहुंच गया था, किंतु बीच में ही शरीर छूट गया। इसलिए इन्होंने तो बिल्कुल मोक्ष के नजदीक वो पहुंच गया था। मोक्ष अज्ञान निवृत्ति होने के लिए जो तत्वज्ञान है वो तत्वज्ञान के बिल्कुल नजदीक निदिध्यासन कर रहा था और उस समय उसका शरीर छूट गया। अर्जुन ने उसके विषय में प्रश्न किया है तो भगवान के कथनानुसार तो उन्होंने पहले सत्कर्म किया है अंतकण की शुद्धि के लिए, और जैसा शास्त्र में कहा है तदनुसार उन्होंने वैदिक संन्यास ग्रहण किया, और जैसे शास्त्र की आज्ञा है कि संन्यास श्रवणम कुर्यात, संन्यास करने के बाद वेदांत का श्रवणादि साधन करे, तो जो भी उन्होंने कार्य किया है वो शास्त्र विहित कर्म किए। शास्त्र निंदित कर्म तो इस योग भ्रष्ट के जीवन में कोई है ही नहीं, और गुरु उपसदन किया, और ऐसे गुरु का उपसदन जो परमंश परिव्राजक भाव को जो प्राप्त है, आत्म साक्षात्कार से युक्त है, पर प्रबोधन में जो दक्ष है, ऐसे गुरु का उपसदन किया है, उनकी सेवा की है। तो ऐसे संलक्षणों से युक्त, सद्गुणों से युक्त शास्त्र विहितकारी जो है वो बीच में यदि वो शरीर उसका छूट जाता है तो उसको योग भ्रष्ट कहते हैं। ऐसे योग भ्रष्ट का विनाश भगवान कहते हैं संभव नहीं है, इस लोक में भी और परलोक में भी नहीं। इसलिए भगवान ने कहा नेव इह न अमूत्र तस्य विनाशः, उसका विनाश संभव नहीं है। तो यह लोक में भी विनाश नहीं है, परलोक में भी उसका विनाश नहीं है, उसमें भगवान खुद हेतु बता रहे कि क्यों विनाश नहीं है उसका। तो श्लोक के उत्तरार्ध में देखो भगवान ने क्या कहा, नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। भगवान ने कहा कि कल्याण कृत कश्चित अपि दुर्गतिम न गच्छति। कहा कि हे अर्जुन, अर्जुन के लिए तात शब्द का प्रयोग किया। देखो श्लोक के पूर्वार्ध में पार्थ शब्द का प्रयोग किया और उत्तरार्ध में तात शब्द का प्रयोग किया। बड़े स्नेह पूर्वक भगवान ने यह शब्द का प्रयोग किया और भगवान मानो अति स्नेह पूर्वक अर्जुन की ये जो आशंका है, संशय है, उसका छेदन भगवान बड़े ही स्नेह पूर्वक कर रहे हैं। तात शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए किया जाता है, शिष्य के लिए किया जाता है, या पिता के लिए किया जाता है, गुरु के लिए किया जाता है। आपको आश्चर्य होगा कि एक ही शब्द का प्रयोग पुत्र के लिए भी पिता पुत्र के लिए करे और पुत्र पिता के लिए करे, ये कैसे हो सकता है। देखिए तात शब्द जो है वो उसका अर्थ का विचार करते हैं हम लोग। तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण इति तात। देखो संस्कृत में इसका अर्थ होता है कि जो पिता है उन्होंने अपना विस्तार पुत्र रूप से किया है, इसलिए पिता ही पुत्र का रूप धारण करते हैं, और ये बिल्कुल प्रत्यक्ष दृष्ट बात है। तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण पिता तात उच्चते, क्योंकि जो पुत्र है वो पिता का ही रूप होता है। पिता ही पुत्र का रूप धारण करता है और वो तो है ही, पिता ने अपने शरीर का जो बीज है वो जो है उसका भार्या गमन करने से गर्भाधान संस्कार किया तो उसी के रूप में वो पुत्र रूप से हो गए। और आपको ऐतरेय उपनिषद का प्रसंग है वो बताते हैं। ऐतरेय उपनिषद में मनुष्य के तीन जन्म बताए, तीन बार गर्भवास होता है एक ही जीवन में, तीन बार गर्भवास होता है। आप लोगों को बड़ा आश्चर्य होगा कि एक बार तो गर्भवास सुना किंतु तीन बार कैसे? देखो, पहला गर्भवास तो पिता के शरीर में होता है और दूसरा गर्भवास माता के शरीर में, तीसरा गर्भवास इस शरीर छूटने के बाद अगली माता के गर्भ में, ऐसा कहा गया। देखिए, आप लोग ने यहां सुना ही होगा कि ये जो जीवात्मा है जिसको अगला शरीर धारण करना होता है वो सीधी सीधा माता के गर्भ में उसका प्रवेश नहीं होता है। पहले पिता के शरीर में उसका प्रवेश होता है। किस रूप से? अन्न के रूप से, अन्न के माध्यम से वो पिता के शरीर में पहले वो प्रवेश कर लेता है। क्योंकि छांदोग्य उपनिषद की पंचाग्नि विद्या के अनुसार ये जो जीव है वो पांच क्रम से वो मनुष्य शरीर धारण करता है। पांच आहुति रूप बनकर के पांच अग्नि में उसका हवन होते हुए वो पांचवी आहुति में वो पुरुष रूप धारण करता है। श्रद्धा, सोम, वृष्टि, अन्न और रेत, ये पांच आहुति का रूप धारण करते हुए द्यु, पर्जन्य, पृथ्वी, पुरुष और योषित, इस क्रम से वो आगे बढ़ता हुआ वो पुरुष रूप धारण करता है। तो देखिए, सबसे पहले श्रद्धा, फिर सोम, वृष्टि और अन्न रूप से वो बन जाता है जीवात्मा। स्वर्ग से आया हुआ जो अनुषेयी जीव है, श्रद्धा, सोम, वृष्टि, वृष्टि के माध्यम से वो बरसात के साथ वो अनुषेयी जीव रहता है और बरसात, बारिश खेत में हुई वहां जो है तिल माशादी बोए हुए है तो उसके साथ वो लिप्त हो जाता है, अन्न रूप बन जाता है। और वो जो अन्न है वो पुरुष खाता है। हम लोग जो है अन्न खाते हैं वो जल से निर्मित अन्न ही तो खाते, इसलिए वो अन्न पुरुष खाता है। तो वो जो अन्न के साथ जो आया हुआ अनुषेयी जीव है वो पिता पुरुष के शरीर में वो प्रवेश कर लेता है और खाए हुए अन्न से इस शरीर को धारण करके रखने वाली जो सात धातुएं हैं उस सात धातु में से एक धातु है पुत्रोत्पत्ति योग्य धातु। यदि वो अनुषेयी जीव ये पुत्रोत्पत्ति योग्य धातु में वो आ गया तो वो जो है पहले पिता के शरीर में उसका गर्भवास हुआ और पिता के शरीर में गर्भवास की कोई समयावधि नहीं है कि नौ मास या दस मास ही रहे, ऐसा नहीं है, असीमित अवधि है। माता के शरीर में वो जब प्रवेश करेगा तब तो वो जो है उधर वृद्धियादि से वो अपनी प्रतीति भी कराता है किंतु पिता के शरीर में रहते हुए वो उधर वृद्धियादि से वो अपनी प्रतीति भी नहीं करा सकता है। वो पिता के शरीर में विद्यमान है तो किंतु जब वो पिता पुत्र की कामना से अपनी भार्या का जब पुत्रोत्पत्ति की इच्छा से जब गमन करता है, तब जो है ये पिता के शरीर में जो स्थित जो अनुषयी जीव है उसका पिता के शिश्न छिद्र से जो निर्गमन और मातृ गर्भ में प्रवेश, उस समय उसका पहला जन्म हो गया, वो प्रथम जन्म हो गया। पिता के शरीर में जो गर्भवास था वो उसका उस समय छूट गया और माता के शरीर में उसका प्रवेश हो गया। वो माता के शरीर में वो 9 मास तक उसका दूसरा गर्भवास होगा और 9 व 10 मास पर्यंत वो गर्भवास में पलेगा और मानुष शरीर आकार को वो धारण करेगा और समयावधि समाप्त होते ही उसका जो जन्म होगा बालक के रूप में वो उसका दूसरा जन्म हुआ, दूसरा गर्भवास। और फिर वो जो है जन्म धारण करने के पश्चात वो उसकी यावद आयु, जब तक उसकी आयु है तब तक वो जिएगा। फिर जो है उसका तीसरा जन्म 2 प्रकार से माना गया। यहां के हिसाब से देखो वो जो जीव जब शादी करता है, पत्नी का पाणी ग्रहण करता है, पत्नी का पाणी ग्रहण करता है तो वो जो है धर्म के लिए करता है। लग्न संस्था जो हमारे यहां धर्म के लिए है, पुत्रेण जय्योयम लोक कर्मणा पितृलोक विद्या देवलोक, इस लोक में विजय प्राप्त करने के लिए कोई साधन है तो वो पुत्र है। इसलिए वो पत्नी का पाणी ग्रहण करने के बाद वो पुत्र की कामना से वो अपनी भार्या में भार्या का जो पाणी ग्रहण करता है और वो जो है पुत्रोत्पत्ति करता है तो वो पुत्र रूप में उसका तीसरा जन्म हुआ। वो खुद पिता जो है वो पुत्र रूप में आ गया। इसलिए पिता का ही विस्तार पुत्र है। इसलिए कहा कि तनोति आत्मानं पुत्र रूपेण पिता तात उच्चते। जिन्होंने अपना ही विस्तार पुत्र रूप से किया है इसलिए उसको तत बोलते हैं। तत का स्वार्थ में अण प्रत्यय होगा तो वो तात शब्द बन जाएगा। इसलिए ये तो पुत्र की दृष्टि से व्युत्पत्ति हुई, किंतु सज्जनों अपने यहां शिष्य और पुत्र में एकता मानी गई है। शिष्य को और पुत्र को एक मान करके कहा, यद्यपि अर्जुन है भगवान श्री कृष्ण का पुत्र तो है नहीं किंतु शिष्य है कि नहीं। तो अपने यहां जो है 2 परंपरा चली है, एक बिंदु परंपरा और दूसरी है नाद परंपरा। देखो बिंदु से जो है आप पुत्र प्राप्त कर सकते हैं और नाद यानी उपदेश दे करके भी आप शिष्य ग्रहण करते हैं, तो वो दोनों एक ही बात है। इसलिए गुरु ने अपना विस्तार शिष्य रूप से किया, जैसे पिता ने अपना विस्तार पुत्र रूप से किया वैसे गुरु ने अपना विस्तार शिष्य रूप से किया। इसलिए गुरु के लिए शिष्य तात है, जैसे पिता के लिए पुत्र तात है। तो देखिए जब पिता जो है अपने पुत्र को बेटा शब्द का प्रयोग करता है तो बड़ा स्नेह जो है पूरा स्नेह वो जो है उंडेल देता है, वैसे ही जो है गुरु भी शिष्य के लिए जो अपना जो स्नेह है ज्ञान है वो जो है पुत्र शिष्य के अंदर जो है पूरा वो जो है उंडेल देता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने यहां अर्जुन के लिए तात शब्द का प्रयोग किया है, इससे भगवान ने अतिशय स्नेह को सूचित किया है और कृपा अतिशय सूचित की है। और अतिशय कृपा सूचित करते हुए कहा कि हे तात, तुम घबराओ नहीं, कल्याण कृत दुर्गतिम न गच्छते। तुम्हारे मन में ये जो संशय है, तुमको घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तुमने जो जिस विषय प्रश्न किया है वो तो जो है निदिध्यासन तक जो पहुंच चुका है उसके विषय में प्रश्न किया है, और मैं तो कहता हूं जो कल्याण कृत है उसकी भी दुर्गति कभी संभव नहीं है। कल्याण कृत शब्द का प्रयोग है, देखो श्लोक में, कल्याण कृत दुर्गतिम कश्चिदपि तात न गच्छति। कल्याण कृत का अर्थ होता है जिन्होंने थोड़ा सा भी सत्कर्म किया है तो उसकी भी दुर्गति संभव नहीं है। तो अर्जुन, तुमने जिसके विषय में प्रश्न किया है वो तो बहुत आगे बढ़ चुका, सत्कर्म करके संन्यास किया, संन्यास के बाद वेदांत का श्रवण मनन निदिध्यासन कर रहा है, बस एक ही स्टेप बाकी था और उसका शरीर छूट गया, तो उसकी तो दुर्गति तो कभी संभव नहीं है। कल्याणकृत यानी जिन्होंने थोड़ा सा भी अच्छा आचरण किया है इस जीवन में उसकी दुर्गति संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य को अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। देखो भगवान भाष्यकार ने एक जगह कहा है, वो भी आपको सुना देता हूं। भगवान भाष्यकार ने कहा कि भगवद गीता किंचद धीता, गंगा जल लव कणिका पीता, सकृदपि येन मुरारी समर्चा, तस्य यम किम कुरुति चर्चा। देखो क्या कहा इस श्लोक में, कहा कि भगवद गीता किंचद धीता, जिन्होंने भगवद गीता किंचित यानी थोड़ा सा अध्ययन, अधीता थोड़ा सा अध्ययन किया है, ज्यादा नहीं, पूरा नहीं, एक अध्याय का भी नहीं समझो, पूरे श्लोक का भी नहीं, आधे श्लोक का मानो उन्होंने किसी ने यदि अध्ययन किया तो तस्य यम किम कुरुते चर्चा, यमराजा जो है उसकी चर्चा तक नहीं कर सकते। देखिए यमराज यदि आते होंगे तब वो लिस्ट देखते होंगे कि नहीं, कि आज किधर जाना है, किसका नंबर लग रहा है, लिस्ट तो देखते ही होंगे, खाता वही तो वो जो है चेक करते होंगे कि आज किसका नंबर लगना है। ये तो नहीं कभी किसी को रास्ते में उसको हड़प ले, चलो कोई नहीं मिला तो तुम ही सही, ऐसा नहीं होता। देखे ऐसा भी होता है कि यमराज के दूत सही जगह सही व्यक्ति के पास पहुंचते हैं तब भी उसको पीछे हटना पड़ता है। भागवत के अंदर बड़ी रोचक कथा है अजामिल की। अजामिल जो है दुष्ट चरित्र था, यद्यपि पहले कहते हैं वो बहुत अच्छा था, किंतु कुसंग के कारण वो जो है दुष्ट चरित्र हो गया था, और दुष्ट चरित्र के फल स्वरूप जब उसको यमराज के दर्शन हुए, यमराज का बड़ा ही भयंकर रूप उन्होंने जब देखा तब वो भयभीत हो गया। और ऐसे होता है जब कोई व्यक्ति भयभीत हो जाता है तो अपने प्रिय व्यक्ति का वो स्मरण कर लेता, तो उन्होंने अपने दशवा पुत्र जो नारायण था, जो उसको बहुत प्रिय था, तो भयभीत होने से उन्होंने अपने पुत्र नारायण का स्मरण कर लिया, नारायण 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 पुकारने लगा, तो भगवान ने सुन लिया और अपने दूतों को कहा कि तुम जाओ मेरे जो भक्त है उसको जो है यम के पास से छुड़ाओ। तो भगवान विष्णु के दूत वहां पहुंच गए और यमराज के दूतों को कहा कि तुम यहां कैसे आ गए भगो। तो यमराज ने या यम के दूतों ने कहा कि ये पापी व्यक्ति है, उसको हम यमलोक में ले जाएंगे, यामी यातना देंगे। तो कहे नहीं, तुम जानते नहीं हो, उन्होंने भगवान का नाम लिया है, भगवान के नाम की महिमा का तुमको पता नहीं है। एक बार भी यदि कोई नाम लेता है तो उसका पाप का पूरा ढेर का ढेर जो है जल करके समाप्त हो जाता, इसलिए भग जाओ तुम यहां से। और यम के दूतों को भगा दिया। और भगवान शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में आगे कहा, भगवद गीता किंचित दीता गंगा जल लव कणिका भी था, उन्होंने जिसने एक बार गंगा जल एक बूंद का पान कर लिया और सकृदपि येन मुरारी समर्चा। एक बार भगवान का नाम लिया, ज्यादा बार नहीं, किंतु एक ही बार यदि लिया तो कहा कि तस्य यम किम कुरुते चर्चा, उसकी यमराज उसकी चर्चा तक नहीं कर सकते। तो इसलिए भगवान ने यह बिल्कुल ठीक कहा कि कल्याणकृत, जो कल्याणकृत है यानी जो भी थोड़ा सा भी कुछ आचरण कल्याणकारी आचरण करता है तो उसकी अर्जुन हितात दुर्गति संभव नहीं है। तो फिर उसका तो कहना ही क्या कि जो सर्वोत्कृष्ट है और निदिध्यासन कर रहा और उसका शरीर छूट गया तो उसकी दुर्गति न होगी, उसमें तो कहना ही क्या। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन ये जो तुमने कहा था कि ये योग भ्रष्ट को ज्ञान हुआ नहीं है इसलिए मोक्ष नहीं होगा और परलोक की इच्छा से स्वर्ग आदि लोक की इच्छा से कर्म का फल जो है स्वर्ग का भी अनुभव नहीं करेगा क्योंकि उन्होंने स्वर्ग के उद्देश्य कर्म अनुष्ठान किया ही नहीं है। ब्रह्मलोक का भी अनुभव वो तुमने कहा था कि इसलिए नहीं करेगा कि उन्होंने उपासना सहित कर्म का अनुष्ठान नहीं किया है। तो ये जो उपासना सहित कर्म का जो अनुष्ठान का फल जो है ब्रह्मलोक है, उस ब्रह्मलोक को प्राप्त करने योग्य जो लक्षण चाहिए वो इसके अंदर है इसलिए वो ब्रह्मलोक का भागी होगा। वो कहते हैं भगवान कहते हैं ये जो योग भ्रष्ट है वो देवयान मार्ग से ब्रह्मलोक का भागी होगा। कैसे भागी होगा उसको भगवान की इच्छा से हम लोग जो है आगे विचार करेंगे। ओम।